मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 20 फरवरी 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे किसान उत्पादक संगठन इसके बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले आइए कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। न्यूज़ में भी आपने सुना, अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा कि हमारे केंद्रीय कैबिनेट ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आप जानते हैं कि हर सप्ताह के बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होती है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ही सही मायने में केंद्रीय सरकार है ना, वही सारे निर्णय लेती है। उसमें से जो आवश्यक होते हैं उन्हें फिर वो संसद के द्वारा पारित कराती है, अदरवाइज वो अपने स्तर पर ही निर्णय लेकर के उन्हें लागू कर देती है। तो कल जो निर्णय लिए हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, दोस्तों उनमें से कुछ निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय हैं। इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, खासकर किसानों के बारे में लिए गए निर्णय। डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 4500 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है, जिसमें लगभग 1.95 करोड़, आप 1 करोड़ भी कह सकते हैं, किसानों को फायदा होगा। और आप जानते हैं कि डेयरी उद्योग भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना सहायक उद्योगों को विकसित किए हम अपने यहाँ के किसानों की आय को दुगुना तिगुना नहीं कर सकते, इसीलिए डेयरी उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर दूसरी बात, जो दूसरा निर्णय लिया गया है कि जो डेयरी से जो किसान जुड़े हुए हैं वो अपने कारोबार के लिए ब्याज लेते हैं, ऋण लेते हैं, ऋण पर उन्हें ब्याज देना पड़ता है। तो पहले सरकार 2% सब्सिडी देती थी, जो ब्याज का था वो सरकार उन्हें सब्सिडी देती थी, उसे बढ़ाकर अब 2.5% कर दिया गया है। किसानों के बारे में जो दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय है जो किसान उत्पादक संगठन से जुड़ा हुआ है उसे मैं मुख्य विषय के तहत लूंगा, लेकिन दूसरे भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट ने लिए हैं। मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से कह रहा हूं, उन पर भी आपकी निगाह रहनी चाहिए। पहला यह है कि तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तिलहन मिशन की शुरुआत करने की बात कही गई है, उसको अब देखते हैं किस रूप में हमारे सामने वो आएगा। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें बदलाव की बात कही गई है, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हैं। आपको मालूम है कि फरवरी 2016 में इसे लागू किया गया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, और लगातार इस योजना पर बात होती रही है। जब यह योजना लागू की गई थी तो बहुत ज़्यादा इससे उम्मीदें की गई थी कि ये किसानों के लिए बिल्कुल एक प्रकार से परिवर्तनकारी युग सिद्ध होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सका। बहुत से कारणों के कारण फसल बीमा योजना का भी वही हश्र लगभग देखने को मिलता है, पढ़ने और सुनने को मिलता है, जो दूसरी योजनाओं के होते हैं। और इसके बारे में मैंने, मुझे याद है कि बिजनेस स्टैंडर्ड का एडिटोरियल कमेंट भी मैंने आपको प्रोवाइड किया था और स्पेशली कहा था कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, तो मैं उसके बारे में बातें करने नहीं जा रहा हूं। लेकिन कैबिनेट ने जो परिवर्तन की बात कही है वो जानकारी आपकी होनी चाहिए, अदरवाइज इसके बाद इस टॉपिक पर जो आपकी जानकारी है वो अधूरी रह जाएगी। इसके साथ ही साथ जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विधेयक लाने की बात कही गई है, मतलब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, अब संसद अपनी मंजूरी देगी, वह है सहायक प्रजनन तकनीकी विधेयक। ये महिलाओं के प्रजनन अधिकारों से संबंधित विधेयक होगा। जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को याद दिलाता रहता हूं कि विमेन एम्पावरमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस में हमेशा इस पर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यह जो विधेयक है वो उसी तरह से जुड़ा हुआ विधेयक है। तो जब भी ये विधेयक इंट्रोड्यूस होगा आपको इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो जानी चाहिए। इसके बाद 22वां विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है, इसका कार्यकाल 3 साल का होता है और खासकर इसका जो मुख्य काम होता है वो यही कि सरकार को वो विधि संबंधी मामलों में सलाह देने का काम करती है। दोस्तों एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है जो आपको अपडेट करने के लिए मालूम होना चाहिए कि जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान, जो हमारे यहाँ का बहुत ही सफल अभियान, जन आंदोलन माना जाता है, उसके सेकेंड चरण की शुरुआत को मंजूरी दी गई है। और खासकर इस सेकेंड चरण का संबंध, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो ये है कि अब गांव में भी प्लास्टिक का उपयोग न करें, गीले कचरे का सही तरीके से निष्पादन हो सके इसके लिए काम किया जाएगा, और यह काम करेगा पर्यावरण मंत्रालय, यानी कि पर्यावरण मंत्रालय कह लीजिए कि इसके लिए विशेष अभियान चलाएगा। तो ये कैबिनेट के कुछ बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन थे जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के टॉपिक के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट मुझे मालूम पड़ते हैं। न्यूज में दोस्तों आपने सुना कि इंडिया 2020 का विमोचन हो गया है ना, भारत 2020। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब होती है जो हमारे भारत सरकार का जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है वो इसे जारी करता है और हर साल ये अपडेट होता चला जाता है। तो ये है 2020। सामान्यतया ये कहा जाता है कि ये जो किताब है सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए मस्ट रीड है, यानी कि ये किताब पढ़ी ही जानी चाहिए। मित्रों, मैं यहाँ पर एक व्यावहारिक बात आपसे कहना चाहूंगा। नो डाउट कि ये किताब अच्छी किताब है, ये सरकारी चूंकि डॉक्यूमेंट है तो सरकार के आपको बहुत अच्छे डेटा, सही डेटा इसी के ही आपको मानकर चलनी चाहिए। लेकिन ये इतनी मोटी किताब है कि मुझे लगता है कि सामान्य तरीके से जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है वो इस जंगल में बुरी तरह से भटक जाता है, बुरी तरह से भटक जाता है। इसमें से कुछ ही चीजें होती हैं जो आपके काम की होती हैं, कुछ ही चीजें, वो बहुत थोड़ी सी चीजें होती हैं। और नए स्टूडेंट के लिए, या कह लीजिए कि बिना सही गाइडेंस के आप उसमें से अपने काम की चीजें निकाल सकें, ये बहुत मुश्किल काम है, लगभग असंभव सा ही है। इसीलिए अगर आप में उन सही चीजों को निकालने की क्षमता नहीं है तो मेरा सजेशन यही होगा कि ये मस्ट रीड नहीं है, कि अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि अब इसके विकल्प के रूप में दूसरी ढेर सारी चीजें अवेलेबल हो गई हैं। हाँ, 8वें-9वें दशक में जरूर, चूंकि दूसरी चीजें अवेलेबल नहीं थी तो जो इंडिया रेफरेंस बुक होती थी वो बहुत महत्वपूर्ण किताब मानी जाती थी। तो च्वाइस आपकी है, लेकिन आप अपने दिमाग पर दबाव तनाव मत लाइएगा कि अरे अरे हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा। ये केवल रेफरेंस बुक है और वो भी केवल थोड़े से टॉपिक्स के लिए। ये कुछ वैसे ही है जैसे हिंदू अखबार के बारे में एक तरह से एक इमेज बना दी गई कि जो हिंदू नहीं पढ़ता है वो सिविल सर्विस में सेलेक्ट नहीं हो सकता, जबकि सही बात ये नहीं है। ठीक है, हिंदू एक अच्छा अखबार है, लेकिन दूसरे अखबार भी अच्छे हैं और वो भी अपने आप में कंप्लीट है। उसी तरह की बात इस पर भी है। दोस्तों, एक शोध है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की, और उस शोध में ये बताया गया है कि जो हमारे टावर्स हैं, जो टेलीकॉम के जो टावर्स होते हैं, मोबाइल टावर्स, उससे जो रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण, उसके कारण जो मधुमक्खियां हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। और जहां ये रेडिएशन बहुत ज्यादा है वहां तो लगभग 70-90% मधुमक्खियां समाप्त हो गई हैं। ये बहुत ही एक खतरनाक बात है, क्योंकि मधुमक्खियों का समाप्त होना केवल एक प्रजाति के समाप्त होने की ही बात नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है और खेती पर तो पड़ रहा है। इसके कारण पूरा फसल चक्र बिगड़ रहा है मधुमक्खी, क्योंकि मधुमक्खी एक स्थान से बैठ करके पराग लेके दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो इससे बहुत बड़ा योगदान हमारे फसल चक्र को बनाए रखने और फसल के उत्पादन की दृष्टि से है। मतलब आप यही कल्पना कर लीजिए कि जो अमेरिका है, अमेरिका में रेडिएशन के कारण मधुमक्खियां लगभग समाप्त सी हो गई हैं, और यही अमेरिका अब बाकायदे चीन से मधुमक्खियों का आयात करता है, और भारत में भी वो खतरनाक स्थिति आ गई है। और बकायदे कुछ राज्यों में जैसे केरल है, बिहार है और पंजाब में जो फसलों को नुकसान हुआ है उसके कारणों की जब खोज की गई तो उसमें यही पाया गया कि हम की मधुमक्खियां नष्ट हो गई हैं। तो चूंकि पर्यावरण आपका टॉपिक है तो ये एक लेटेस्ट जानकारी इसके बारे में आपको मैं दे रहा हूं। दोस्तों, एक AGR के बारे में आप पढ़ रहे होंगे। AGR ये टेलीकॉम कंपनी से संबंधित है। आप देख रहे हैं कि अखबारों में खूब आ रहा है और एडिटोरियल कमेंट भी आ रहे हैं कि हमारी जो दो बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, एक है वोडाफोन आइडिया, अब दोनों एक ही बन गई हैं, और दूसरा है हमारे भारती मित्तल जी का, इन दोनों टेलीकॉम कंपनी पर कुछ पैसा बकाया है, शुल्क बकाया है। एयरटेल पर करीब 35,000 करोड़ रुपए और वोडाफोन आइडिया पर लगभग 53,000 करोड़ रुपए। और ये जो बकाया है ये AGR बकाया है। AGR का मतलब है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, मालूम होना चाहिए, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। इस रेवेन्यू में लाइसेंस फी होती है और साथ ही साथ स्पेक्ट्रम चार्जेस होते हैं, स्पेक्ट्रम चार्जेस जो टेलीकॉम सर्विस सेक्टर पर लगाए जाते हैं। मित्रों, वक्त नहीं है कि मैं इसके बारे में डिटेल में बता सकूं, लेकिन ये इस शब्द का अर्थ मैंने आपको बता दिया क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वह है फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक संगठन। ये देखिए क्या है, संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन की विशेषता यह होती है कि ये बकायदे रजिस्टर्ड होती है, कंपनी एक्ट के तहत भी और सोसाइटी के रूप में भी, सहकारी समितियों के रूप में भी, दोनों इनके रूप होते हैं। अभी हमारी कैबिनेट ने एक निर्णय लिया है और उस निर्णय के तहत आज आपने अखबारों में पढ़ा ही होगा कि बकायदे अब और अधिक इस तरह के उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। लगभग लगभग 5 सालों में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन करने का प्रावधान है और ये गठन सरकार ही करेगी। और इसके माध्यम से जब इन 10,000 संगठनों का गठन हो जाएगा तो लगभग लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों को कृषि में रोजगार मिल सकेगा और इसके लिए सरकार ने लगभग 4500 करोड़ रुपए अलॉट भी किए हैं कि 4500 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। अब आप देखिए कि ये जो एफ शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं FPO, ये इंडिपेंडेंट टॉपिक है और आपको इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। ये जो FPO है इनका जो गठन होता है ये एक संगठन है आप कह लीजिए कि, और इसका जो पर्पज होता है, जो काम होता है आप कह लीजिए कि किसानों को सलाह देना बीज के बारे में, खाद के बारे में, मशीनों के बारे में, बाजार के बारे में, कर्ज के बारे में, या और उनको कोई टेक्निकल एडवाइस चाहिए तो ये जो संगठन है ये बकायदे टेक्निकल एडवाइस देते हैं और यहां तक कि इन्हें ट्रेंड भी करते हैं। ये जो संगठन होते हैं इन संगठनों में सामान्यतया 300-300 सदस्य होते हैं सामान्यतया, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो पूर्वोत्तर के हमारे स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उनमें 100-100 सदस्य भी इसके हो सकते हैं। अभी तक हमारे देश में लगभग 3,000 के करीब FPO हैं और सरकार ने 5 साल में 10,000 और ज्यादा इस तरह के संगठन बनाने की बात कही है। आप समझ सकते हैं कि अगर आप बहुत ही व्यावहारिक तरीके से सोचें और ये संगठन सही मायने में काम करें तो इससे हमारे जो किसान हैं उनको कितना जबरदस्त फायदा मिल सकता है, क्योंकि ये संगठन उन सारी व्यवस्थाओं को देखेंगे जो किसानों से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये संगठन जो संचालित होंगे किसानों के द्वारा ही होंगे, मतलब ये कोई सरकारी संगठन नहीं है, सरकार की मदद इसमें जरूर है लेकिन ये सहकारी समिति जो कोऑपरेटिव सिस्टम होता है उस कोऑपरेटिव सिस्टम के तहत अपना काम करेंगे। ये खुद अपने निर्णय लेंगे, खुद अब सरकार से बातचीत करेंगे जरूरत पड़ने पर, और जरूरत पड़ने पर अपने एक्सपर्ट बुलाएंगे, उनको किस चीज की आवश्यकता है इसके बारे में ये निर्णय लेंगे। तो सही मायने में इससे एक ओर जहां हमारे ग्रामीण किसानों में लीडरशिप की क्वालिटी आएगी, मैनेजमेंट की क्वालिटी आएगी, वो अपने बारे में व्यावहारिक निर्णय ले सकेंगे, साथ ही साथ वो अपना हित साधन भी कर सकेंगे। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इससे कुछ लोगों को कृषि कार्य संबंधी रोजगार भी मिल सकेगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंस के लिए खासकर हो गया है। देखिए प्री में भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि प्री में पूछा ही नहीं जा सकता, लेकिन मेंस के लिए मुझे लग रहा है कि इस साल जो एग्जाम होने हैं उसमें यह मुझे महत्वपूर्ण मालूम पड़ रहा है। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, उनकी संख्या आज कुछ ज्यादा ही है लेकिन उसमें से कुछ क्लिपिंग्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उन्हें अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से देख लेंगे। और उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश की क्लिपिंग्स हैं उनका हिंदी वर्जन भी आपको आगे चल करके प्रोवाइड किया जाएगा। और आज के करंट कंटेंट के तहत भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोवाइड किया गया है, वो है आयुष्मान भारत योजना की विफलता। हेल्थ सेक्टर में जो भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू की थी इस पर हम लोगों ने बात की है डेली ऑडियो लेक्चर में, उसका लिखित रूप है और इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए, खासकर मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हिंदू में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं श्याम पांडे, अनूप राज, काजल बल्होत्रा और सत्यप्रकाश, आपका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।